वही राजवीर जिंदल सबकी ओर बंदूक ताने तुरंत वहां से बाहर निकल गया था, क्योंकि भले ही वो वहां पर अपने चेले अरमान की जान बचाने आया था, अब आगे फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी मृतक पत्नी थी और अपनी पत्नी से जुदा होकर वो एक मिनट भी नहीं रह सकता था। इसीलिए राजवीर जल्दी ही वहां से दौड़कर अपने घर की ओर रवाना हो चुका था और किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वहीं आस्था एकदम कश्मकश का शिकार थी। वो बारी बारी से कभी अपने भाई अविनाश रघुवंशी को देख रही थी तो कभी वंशिका को देख रही थी। कहीं ना कहीं आस्था को लगा कि अविनाश अच्छी तरह से जानता है कि उसकी राजवीर जिंदल से दुश्मनी है, तो राजवीर जिंदल यहाँ पर क्या कर रहा था। वेल, राजवीर के जाने के बाद वंशिका फूट फूट कर जोरों से घुटनों के बल बैठकर रोने लगी थी, लेकिन तब अचानक टाइगर ने मारिया की ओर इशारा किया और मारिया पलक झपकते ही वंशिका के ठीक सामने मौजूद थी। उसके बालों से पकड़कर उसने उसे बेरहमी से उठाया और उसे घूरते हुए इमोशनलेस होकर बोली, तेरे बातों में कोई और आ सकता है लेकिन मैं नहीं। गुस्से भरी आंखों से देखते हुए आगे बोली, मुझे सीधे सीधे तरीके से ये बताओ, तुमने किन को मारने की कोशिश क्यों की है और किस दुश्मन ने तुम्हें भेजा है? बोलो, हमें जवाब दो। क्या स्विट्जरलैंड वाले दुश्मनों ने भेजा है या फिर किसी और ने भेजा है? कहीं ना कहीं उन सबको तो यही लग रहा था कि जरूर वंशिका को किसी ने प्लांट किया है ताकि वो अरमान के परिवार के करीब जा सके और आसानी से अरमान की जान ले सके। इसीलिए मारिया सख्ती से वंशिका से पूछताछ कर रही थी। वहीं दूसरी ओर आस्था, जिसके पति की जान खतरे में थी और वंशिका का सच सामने आने के बाद उसे बहुत बुरा लग रहा था, इस वक्त सभी शॉक में थे, स्पेशली रौनक जो कि वंशिका से काफी ज्यादा अटैच हो गई थी। मारिया की पूछताछ के बाद रौनक वंशिका के सामने खड़ी हो गई थी और उसकी ओर देखते हुए उदासी भरी आवाज में बोली, मैंने तुम्हें अपनी बहनों जैसी इज्जत दी, प्यार दिया, सम्मान दिया, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर जानलेवा हमला करने की? अरमान मेरे भाई हैं और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। कहीं ना कहीं रौनक ने जैसे ही अपने अरमान की तबीयत को लेकर वंशिका को खरी खोटी सुनाई तो वंशिका केवल रोती रही, उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बारी बारी से सभी ने उसे इसी तरह से सवाल किया। वहीं ध्रुव उसके सामने आया और निराशा से उसे देखते हुए दबी हुई आवाज में बोला, ये क्या किया तुमने? हाँ, क्या किसी दुश्मन ने भेजा है तुम्हें? अरे, मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था, मुझे क्या पता था जिस लड़की से मैं मोहब्बत कर रहा हूँ वो लड़की मेरे भाई की कातिल निकलेगी। जवाब दो मुझे, क्यों किया ऐसा? बोलो, जवाब दो। अब वंशिका के आसपास ध्रुव, रश्मि, आकाश, सुमित, साथ साथ एंजल, राधिका, सभी लोग अलग अलग तरीके से वंशिका से सवाल जवाब कर रहे थे। वंशिका ने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखकर जोरों से चीख मार दी और चिल्लाते हुए बोली, बस करो, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। और हाँ, मुझे किसी ने प्लांट नहीं किया है और हाँ, मैं खुद अपने हाथों से अरमान सिंघानिया की जान लेना चाहती थी, लेकिन मेरा यकीन मानो, अब मैं उसकी जान नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अब अरमान को बचाना चाहती हूँ। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं अरमान को बचाना चाहती हूँ। अब आस्था अचानक से उठ खड़ी हुई और उठकर सभी लोगों को साइड में करते हुए बोली, मैं वंशिका से कुछ बात करना चाहती हूँ। आस्था ने घुटनों के बल आंसू बहाती हुई वंशिका की ओर देखा। अगले ही पल आस्था भी उसके पास घुटनों के बल बैठ गई थी और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उम्मीद भरी नजरों से देखकर बोली, वंशिका, मेरी आंखों में देखकर बस सिर्फ ये बताओ, क्या तुम मेरे पति की जान बचा सकती हो? आस्था ने सीधे तरीके से वंशिका से बातें की थी। अब वंशिका ने आस्था की बात सुनकर अपने आंसुओं को बेरहमी से पोंछ दिया था और आस्था की ओर देखकर बोली, मेरा यकीन मानो आस्था, मैं यहाँ वापस अरमान की जान बचाने के लिए ही आई हूँ और मैं जानती हूँ मैं पहले गलत थी। मैं तुम्हें सारी बातें समझा सकती हूँ, किस तरह राजवीर जिंदल ने और अरमान सिंघानिया उर्फ डेविल किंग ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब जैसे ही बातों में वंशिका ने डेविल किंग का नाम जिक्र किया और अरमान को डेविल किंग कहकर पुकारा तो आस्था के सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी। साथ साथ अब आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, देव, टाइगर सभी के सभी बारी बारी से एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे थे, क्योंकि वो सब लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि अरमान सिंघानिया की डेविल किंग की सच्चाई कभी भी आस्था के सामने आए। फिलहाल आस्था अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी। राजवीर जिंदल का उसे समझ में आता था कि लोगों की जान लेने के लिए राजवीर जिंदल किस हद तक गिर सकता है और उसने डेविल किंग के बारे में अब तक जो कुछ सुना था वो सब कुछ उसे याद आने लगा था कि किस तरह से डेविल किंग ने बेरहमी से कितने सारे लोगों की जान ली है। तभी आस्था खुद के जज्बातों को कंट्रोल करते हुए उठ खड़ी हुई। फटाफट से वंशिका को लेकर वो अरमान के ठीक सामने चली गई थी। उसने एक नजर अरमान के नीले पड़े शरीर को देखा और वंशिका को किसी ने भी वहां जाने से रोकने की कोशिश नहीं की थी। इनफैक्ट एक बार को टाइगर उसे रोकना चाहता था लेकिन आस्था ने अपना हाथ दिखाकर रोक दिया था। आस्था के बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि आस्था वंशिका पर पूरी तरह से यकीन कर रही है। दूसरी ओर टाइगर और मारिया उसे आस्था के मना करने के बावजूद वंशिका के साथ साथ वार्ड में आ गए थे। अरमान को देखने के बाद वंशिका ने जो एंटीडोट बनाया था अगले ही पल उसे एंटीडोट दे दिया था और एंटीडोट देने के बाद टाइगर और मारिया दोनों ने वंशिका को अपनी कस्टडी में ले लिया था। वेल, धीरे धीरे अब समय गुजरने लगा था और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे अरमान की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। डॉक्टर पूरे के पूरे उसके पास जमा हो गए थे, उसे बचाने की कोशिश करने लगे थे,
अब सब लोग वंशिका को गुस्से और नफरत की नजर से देखने लगे थे। वहीं दूसरी ओर वहीं अबीर सिंह राठौर काफी हद तक हैरान हो रहा था। तब अबीर अचानक उठा और आस्था के पास आया था। आस्था के पास आकर उसने उसे कंधों पर से पकड़ लिया था। तब आस्था ने खाली आंखों से अबीर की ओर देखा और अगले ही पल अबीर आस्था का हाथ थामकर उसे अस्पताल के कॉरिडोर में ले आया था। इस वक्त आस्था ने अपना सर झुकाया हुआ था। ना जाने क्यों उसे एक अलग तरह की शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। बार बार उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। कहीं ना कहीं उसकी आंखों के सामने जितने भी डेविल किंग ने आज तक बड़ी ही बेरहमी के साथ मर्डर किए थे वो सब एक एक करके तैरने लगे थे। उसके आगे वो कुछ और समझ नहीं पा रही थी। अबीर ने आस्था की मेंटल कंडीशन समझ लिया था। इस वक्त आस्था प्रेग्नेंट थी और ऐसी सिचुएशन में उसका इस तरह से टेंशन लेना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। इसलिए अबीर आस्था को देखते हुए सीरियस वॉइस में बोला, तुम जानती हो जब मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा था उसी वक्त मैं अपना दिल तुम पर हार गया था। लेकिन वक्त के साथ मुझे ये चीज समझ आ गई कि प्यार वो नहीं है जिसे हासिल किया जाए, कुर्बानी का दूसरा नाम प्यार है। क्योंकि डेविल किंग का नाम सुनने के बाद मैं तुम्हारी हालत और तुम्हारे उड़े हुए चेहरे का रंग देखकर इस बात का अंदाज अच्छी तरह से लगा सकता हूँ कि शायद तुम्हें आज से पहले अरमान की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। तुम जानती हो मैंने तुम्हें डेविल किंग पर कुर्बान क्यों किया। मैं तुम्हें आज जरूर डेविल किंग के बारे में बताना चाहूंगा। ये बात सच है कि उसने अनगिनत खून किया, मर्डर किया है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के मर्डर किए हैं जो जिंदा रहने के लायक नहीं थे। अबीर के पास अच्छा मौका था अरमान के खिलाफ आस्था के कान भरकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में लेकर आने का, लेकिन इस वक्त अबीर ने आस्था को सारा सच बताने का फैसला किया था।
क्योंकि अगर आस्था ऐसी हालत में इस तरह की टेंशन लेती रहती तो न जाने उसके होने वाले बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। क्योंकि आस्था अरमान से कितनी शिद्दत से मोहब्बत किया करती थी ये बात तो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। और ये बात सच थी कि अगर आस्था से अरमान की मोहब्बत छीन ली जाए तो आस्था एक मिनट भी जिंदा नहीं रह पाती। और अबीर ये नहीं चाहता था, इसीलिए अबीर ने आस्था को सारा सच बताने का फैसला किया था ताकि आस्था के लिए फैसला लेना आसान हो जाए। वहीं दूसरी ओर सब लोगों को यही लग रहा था कि जरूर वंशिका ने कोई गलत एंटीडोट अरमान को दे दिया है। वहीं ध्रुव तो अब अपनी गुस्से से भरी आंखों के साथ वंशिका के सामने खड़ा होकर उसके कंधों को झकझोड़ते हुए डेंजरस वॉइस में बोला, याद रखना अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। उस वक्त ध्रुव ने बड़े ही इंटेंस नजरों से वंशिका को देखते हुए बिना किसी इमोशंस के साथ वंशिका से ये बात कही थी। ध्रुव की इस धमकी से न जाने वंशिका के दिल दिमाग में क्या हुआ कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। ध्रुव की बातों में ऐसा कुछ था जिसे सुनकर हर किसी के हाथों का रोंगटा तक खड़ा हो गया था। वेल, वंशिका जानती थी कि उसने हैवी एंटीडोट अरमान को दिया है जिसके कुछ अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसकी जान किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती है। इसीलिए वंशिका को अपने बनाए हुए एंटीडोट पर पूरा का पूरा भरोसा था और केवल आधे घंटे के अंदर अंदर ये बात सच साबित होने वाली थी। सब लोगों ने सोच लिया था कि अगर वंशिका ने अरमान को गलत एंटीडोट दिया है तो वो सीधा सीधा उसे ब्लैकी के यानी कि अरमान के पाले हुए जंगली जानवरों के आगे उसे डाल देंगे। सभी का यही प्लान था। वहीं दूसरी ओर आस्था अबीर की एक एक बात को ध्यान से सुन रही थी। तभी अबीर ने 24 केसेस की डिटेल आस्था को देते हुए कहा कि इन लोगों ने किस तरह से दूसरों पर अत्याचार किया है। जिस आदमी के अरमान सिंघानिया ने कई सौ से ज्यादा टुकड़े किए थे उस आदमी ने बड़ी ही बेरहमी से एक 9 साल की बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया था। कहीं ना कहीं सारी बातें सुनकर आस्था थोड़ी देर के लिए शांत हो रही थी, लेकिन फिलहाल उसने अबीर की बातें सुनने के बाद उसके हाथों को अपने कंधों पर से हटा दिया था और बिना कुछ कहे जाकर हॉस्पिटल के लॉबी में बैठ गई थी और वंशिका की ओर देखने लगी। वंशिका ने जैसे ही आस्था को देखा वो उसके पास आई, उसका हाथ थामकर बैठते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है और मेरे यकीन मानो आस्था मेरा तुम्हें दुख पहुँचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर थी। नफ़रत की आग मेरे दिल में बचपन से जल रही थी। ये बोलकर वंशिका ने अपने भाई से रिलेटेड जो भी सारी बातें थी आस्था को बताने लगी और अरमान को किस तरह से उसने अपने भाई का खून करते हुए देखा था और कब उसने अरमान का पीछा करना शुरू किया और डेविल किंग के बारे में सारी बातें उसने आस्था को बता दी थी। उस वक्त अस्पताल के लॉबी में सभी लोग मौजूद थे, लेकिन वंशिका और आस्था उन सब से थोड़ी दूरी पर थे जिसकी वजह से उन दोनों की बात कोई नहीं सुन पा रहा था। आस्था उस वक्त बिल्कुल खामोशी थी, वो किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसे बस अगर किसी चीज़ का इंतज़ार था तो वो था सिर्फ अपने पति के होश में आने का इंतज़ार था। उस वक्त सबने अपना सर झुकाकर बस बेसब्री से इमरजेंसी रूम की तरफ देख रहे थे और उस पल का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उन्हें अरमान के ठीक ठाक होने की खबर सुनाई दे। लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल के डॉक्टर बार बार लॉबी के चक्कर लगा रहे थे और नर्स अंदर बाहर आ जा रही थी तो सभी लोगों का दिल घबराहट से भर गया था कि न जाने अब क्या होगा, अरमान ठीक है या नहीं है। सब लोग उस वक्त काफी ज्यादा दुखी थे। कुछ देर बाद आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे। बाहर आकर उन्होंने बोला, आई एम सॉरी। अब जैसे ही डॉक्टर ने बाहर आकर आई एम सॉरी बोला, सब लोगों का दिल की धड़कन एकदम से रुक चुकी थी और सब लोग हैरानी से बड़ी बारी एक दूसरे को देखने लगे थे। वहीं आस्था को तो ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। लेकिन तभी तुरंत ध्रुव, जो कि पहले से ही गुस्से में था, वो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़कर बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ सॉरी सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ अरमान भाई को? वो ठीक तो है ना? कहीं ना कहीं सबका यही इरादा था कि आज वो वंशिका को जिंदा जला डालेंगे, उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी डॉक्टर ने आगे बोलना शुरू किया, जी नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था कि हम इसके लिए माफी चाहते हैं कि हम अरमान सिंघानिया का इलाज नहीं कर पाए, लेकिन इस लड़की ने जो एंटीडोट बनाया था उसने उनका इलाज कर दिया है और अरमान अब खतरे से बाहर है और अब ठीक 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर उन्हें होश आ जाएगा। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये बताया, सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे।